नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नार ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, सैंड्रा मैट्स की माइंड मास्टर्स, डेटा मनोविज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संगम पर लिखी गई विश्लेषणात्मक गैर कथा पुस्तक है। कोलंबिया बिजनेस स्कूल की कंप्यूटेशनल सामाजिक वैज्ञानिक मैट्स बताती है कि हमारी ऑनलाइन गतिविधियां, खरीदारी, स्थान संबंधी संकेत और सोशल मीडिया व्यवहार किस तरह ऐसे डिजिटल निशान बनाते हैं जिनसे एल्गोरिदम हमारे व्यक्तित्व, प्राथमिकताओं और संभावित निर्णयों का अनुमान लगाते हैं। पुस्तक का केंद्रीय विषय मनोवैज्ञानिक लक्ष्यीकरण है, अर्थात लोगों की मानसिक प्रवृत्तियों को समझकर उनके लिए अलग ढंग से संदेश, उत्पाद या विकल्प तैयार करना। मैट्स इसे केवल भयावह निगरानी की कहानी नहीं बनाती, वे दिखाती है कि यही क्षमता स्वास्थ्य, वित्तीय निर्णयों, शिक्षा और उपभोक्ता अनुभव को बेहतर बना सकती है। साथ ही वे निजता, स्वतंत्र चुनाव और डेटा के स्वामित्व के गंभीर प्रश्न उठाती है। पुस्तक का उद्देश्य पाठक को यह समझाना है कि डिजिटल प्रणालियां मनुष्य को सहज ज्ञान से नहीं, सांख्यिकीय पैटर्नों से पढ़ती हैं, और इस शक्ति के जिम्मेदार उपयोग के लिए किन संस्थागत नियमों की जरूरत है, मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, डिजिटल निशान कैसे व्यक्तित्व का सांख्यिकीय चित्र बनाते हैं। माइंड मास्टर्स का पहला महत्वपूर्ण विचार यह है कि डिजिटल डेटा केवल हमारी घोषित पहचान नहीं बताता, बल्कि हमारे व्यवहार से निकलने वाले अनजाने संकेत भी दर्ज करता है। मैट्स इन दोनों में अंतर स्पष्ट करती है। कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करता है वह एक सोच समझकर किया गया पहचान दावा हो सकता है, लेकिन खरीदारी की आदत, किसी ऐप के उपयोग का समय, चलने फिरने के पैटर्न, क्लिक और लाइक जैसे संकेत व्यवहारिक अवशेष हैं। इन्हें व्यक्ति आमतौर पर अपने मनोवैज्ञानिक परिचय के रूप में नहीं देखता, फिर भी बड़े पैमाने पर इनका विश्लेषण उपयोगी अनुमान बना सकता है। एल्गोरिदम एक अकेले संकेत से किसी व्यक्ति के बारे में अंतिम सत्य नहीं निकालते, वे बहुत से संकेतों में बार बार उभरने वाले संबंधों को पहचानते हैं, फिर समान पैटर्न वाले लोगों के ज्ञात परिणामों के आधार पर संभावना का अनुमान लगाते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया की शक्ति उसके डेटा के विस्तार और मॉडल की गुणवत्ता में है, न कि किसी रहस्यमय ढंग से मन पढ़ लेने में। पुस्तक यह भेद समझाकर दो अतियों से बचाती है, पहली यह मानना कि डेटा से कुछ पता ही नहीं चलता, दूसरी यह मान लेना कि एल्गोरिदम व्यक्ति को उससे अधिक निश्चित रूप से जानते हैं जितना वह स्वयं जानता है। अनुमान उपयोगी हो सकते हैं, पर वे संदर्भ, त्रुटि और असमान डेटा गुणवत्ता से बंधे रहते हैं। दूसरा, मनोवैज्ञानिक लक्ष्यीकरण में भविष्यवाणी से व्यवहार परिवर्तन तक का सफर। मैट्स के अनुसार किसी व्यक्ति की रुचि या व्यक्तित्व का अनुमान लगाना अपने आप में लक्ष्यीकरण नहीं है। निर्णायक अगला कदम उस अनुमान के आधार पर संदेश, समय, माध्यम या विकल्प को बदलना है ताकि व्यवहार बदलने की संभावना बढ़े। उदाहरण के लिए, एक ही उत्पाद के लिए अलग व्यक्तित्व प्रवृत्तियों वाले समूहों को अलग भाषा, दृश्य या लाभ दिखाया जा सकता है। यह साधारण जनसांख्यिकीय विज्ञापन से अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि उम्र या स्थान के बजाय प्रेरणा, सामाजिक झुकाव या जोखिम के प्रति रुझान जैसे मनोवैज्ञानिक संकेत केंद्र में आते हैं। पुस्तक में चर्चा किए गए व्यावसायिक उदाहरण दिखाते हैं कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी उपभोक्ताओं के लिए अलग संदेश बनाना खरीदारी की प्रतिक्रिया बदल सकता है, पर पुस्तक का व्यापक तर्क यह है कि प्रभाव डालना हमेशा छल नहीं होता। किसी को बचत बढ़ाने, स्वास्थ्य सहायता लेने या उपयोगी शैक्षिक सामग्री तक पहुंचने के लिए उपयुक्त ढंग से प्रेरित करना लाभकारी हो सकता है। नैतिक अंतर लक्ष्य से अधिक प्रक्रिया में भी है। क्या व्यक्ति को पता है कि उसे क्यों और किस आधार पर संदेश दिया जा रहा है? क्या वह आसानी से मना कर सकता है? और क्या डिजाइन उसकी दीर्घकालिक भलाई का समर्थन करता है या उसकी क्षणिक कमजोरियों का शोषण करता है? इसीलिए भविष्यवाणी की सटीकता को प्रभाव के औचित्य का प्रमाण नहीं माना जा सकता। तीसरा, निजता के साथ एजेंसी और स्वनिर्णय का प्रश्न। माइंड मास्टर्स में सबसे गहरी चिंता केवल यह नहीं है कि कंपनियों के पास बहुत अधिक व्यक्तिगत डेटा है। मैच का प्रश्न यह भी है कि जब प्रभाव डालने की प्रक्रिया अदृश्य हो, तब व्यक्ति का स्वतंत्र निर्णय कितना वास्तविक रहता है। यदि कोई प्रणाली जानती है कि कौन सा संदेश किसी विशेष व्यक्ति की चिंता, असुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति की चाह या तत्काल प्रलोभन को सबसे अधिक सक्रिय करेगा, तो वह विकल्प प्रस्तुत करने से आगे बढ़कर निर्णय के वातावरण को आकार दे सकती है। यही स्थिति एजेंसी, अर्थात अपने कारणों और प्राथमिकताओं के आधार पर चुनाव करने की क्षमता को चुनौती देती है। पुस्तक कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे प्रकरणों से जुड़ी व्यापक आशंकाओं की पृष्ठभूमि में यह बताती है कि मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का राजनीतिक या व्यावसायिक प्रयोग व्यक्ति और समाज दोनों पर असर डाल सकता है। मैट्स पारदर्शिता और सहमति को आवश्यक मानती है, लेकिन केवल लंबी शर्तों पर क्लिक करवा देना पर्याप्त समाधान नहीं मानती। आम व्यक्ति के लिए यह जानना कठिन है कि कौन सा डेटा किस निष्कर्ष तक ले जाएगा और भविष्य में उसका उपयोग कैसे बदलेगा। इसलिए जिम्मेदारी केवल उपयोगकर्ता पर नहीं डाली जा सकती। प्लेटफॉर्मों, कंपनियों, डिजाइनरों और नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि डेटा आधारित प्रभाव स्पष्ट, अनुपातिक, जवाबदेह और व्यक्ति के हितों के अनुकूल हो। चौथा, लाभकारी उपयोग और हानिकारक हेरफेर के बीच व्यावहारिक सीमा। पुस्तक की एक विशेषता इसका संतुलित दृष्टिकोण है। मैड्स मनोवैज्ञानिक लक्ष्यीकरण को ना तो मूलतः बुरा घोषित करती है, ना तकनीकी प्रगति के नाम पर उसका अनियंत्रित समर्थन करती है। वही डेटा क्षमता जो किसी उपभोक्ता को अनावश्यक खर्च की ओर धकेल सकती है, उसे बेहतर वित्तीय निर्णयों के लिए समय पर सहारा भी दे सकती है। इसी प्रकार डिजिटल व्यवहार के संकेत मानसिक स्वास्थ्य सहायता की जरूरत वाले लोगों तक प्रारंभिक पहुंच बनाने में उपयोगी हो सकते हैं, बशर्ते गलत अनुमान, कलंक और संवेदनशील जानकारी के दुरुपयोग से बचाव हो। उपयोग की नैतिकता जांचने के लिए लक्ष्य, शक्ति संतुलन और परिणाम को साथ देखना जरूरी है। क्या प्रणाली व्यक्ति की घोषित जरूरत पूरी कर रही है या संगठन के लाभ के लिए उसकी कमजोरियों का लाभ उठा रही है? क्या व्यक्ति के पास विकल्प और नियंत्रण है? क्या संभावित नुकसान का आकलन किया गया है? यह ढांचा खासकर व्यावसायिक नेताओं के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि वैयक्तिकरण अब केवल विज्ञापन विभाग का काम नहीं रहा। उत्पाद डिजाइन, ग्राहक सेवा, ऋण, भर्ती और स्वास्थ्य सेवाओं में भी डेटा आधारित अनुमान बढ़ रहे हैं। पुस्तक का संकेत स्पष्ट है। जिम्मेदार उपयोग का अर्थ केवल कानूनी अनुपालन नहीं, बल्कि उन लोगों के हितों की सक्रिय रक्षा है जिनके व्यवहार और मनोविज्ञान को प्रणाली माप रही है। अंत में, डेटा शासन के लिए पारदर्शिता, सहमति और डेटा सहकारी मॉडल मैच के समाधान व्यक्तिगत सावधानी तक सीमित नहीं है। वे मानती है कि अकेले व्यक्ति से हर डेटा अनुरोध समझने, जोखिम आंकने और लगातार अपनी निजता बचाने की अपेक्षा करना अव्यावहारिक है। इसीलिए पुस्तक डेटा शासन के अधिक सामूहिक और संरचनात्मक रूपों पर विचार करती है। डेटा सहकारी मॉडल ऐसा ही एक विचार है, जिसमें लोग अपने डेटा से संबंधित अधिकारों और निर्णयों को मिलकर संचालित कर सकते हैं, बजाय इसके कि हर व्यक्ति विशाल तकनीकी कंपनियों के सामने अलग अलग सौदा करे। इस मॉडल का महत्व डेटा को केवल बिकाऊ संपत्ति नहीं, बल्कि सामूहिक हित और व्यक्तिगत अधिकार से जुड़े संसाधन के रूप में देखने में है। पुस्तक पारदर्शिता पर भी जोर देती है, अर्थात संस्थाओं को स्पष्ट करना चाहिए कि वे कौन सा डेटा ले रही है, उससे क्या अनुमान बना रही है और उसका उपयोग किस उद्देश्य से होगा। अनुमति आधारित पहुंच और फेडरेटेड लर्निंग जैसी निष्ठा संरक्षक तकनीकें भी जोखिम घटा सकती है, क्योंकि इनमें संवेदनशील डेटा को हर बार एक केंद्रीय भंडार में भेजना जरूरी नहीं होता। फिर भी पुस्तक किसी एक तकनीकी उपाय को अंतिम उत्तर नहीं मानती। डेटा सहकारी व्यवस्था के क्रियान्वयन और नीति संबंधी विवरणों पर अभी और काम की आवश्यकता है। इसका उपयोगी योगदान यह है कि यह बहस को केवल व्यक्तिगत गोपनीयता सेटिंग से उठाकर संस्थागत शक्ति, प्रतिनिधित्व और जवाबदेही तक ले जाती है। निष्कर्ष में, माइंडमास्टर्स उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो यह समझना चाहते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, विज्ञापन प्रणालियां और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उनके चुनावों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। विपणन, उत्पाद डिजाइन, विज्ञापन, ग्राहक अनुभव, नीति, डेटा विज्ञान और संगठनात्मक नेतृत्व से जुड़े लोगों के लिए यह विषय पेशेवर जिम्मेदारी का भी है। पुस्तक उन्हें केवल अधिक प्रभावी लक्ष्यीकरण की तकनीक नहीं देती, बल्कि यह कसौटी देती है कि प्रभाव कब उपयोगी वैयक्तिकरण है और कब अनुचित हेरफेर बन जाता है। सामान्य पाठक को इससे अपनी डिजिटल गतिविधियों और डेटा सहमति के बारे में अधिक सटीक भाषा मिलती है। वे समझ सकते हैं कि ऑनलाइन व्यवहार से निकले अनुमान संभावनाएं होते हैं, अपरिवर्तनीय पहचान नहीं। इसी समझ से अति भय और अंधविश्वास दोनों से बचना संभव होता है। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में मैज की अलग पहचान उनका अनुभवजन्य, संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण है। वे मनोवैज्ञानिक लक्ष्यीकरण को केवल चुनावी घोटालों या भयावह भविष्यवाणियों तक सीमित नहीं करती, वे इसके व्यापारिक, स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक उपयोगों को भी गंभीरता से देखती हैं। साथ ही वे बताती हैं कि पारदर्शिता भर पर्याप्त नहीं है, क्योंकि शक्ति और जानकारी का असंतुलन बहुत बड़ा है। डेटा सहकारी मॉडल, अनुमति आधारित व्यवस्था और भविष्य के दुरुपयोग को ध्यान में रखकर डिजाइन जैसी दिशाएं पुस्तक को उपयोगी बनाती है। समाधान अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, फिर भी विश्लेषण की स्पष्टता इस पुस्तक की प्रमुख शक्ति है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं सांड्रा मास, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।